ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आम्बेडकर जयंती के अवसर पर हरियाणा जाएंगे। वे पहले हिसार जाएंगे और सुबह 10:15 बजे हिसार से अयोध्या के लिए वाणिज्यिक उड़ान को हरी झंडी दिखाएंगे और हिसार हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दोपहर करीब 12:30 बजे प्रधानमंत्री यमुनानगर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री वहां लोगों को भी संबोधित करेंगे। हवाई यात्रा को सुरक्षित, सस्ती और सभी के लिए सुलभ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के मुताबिक प्रधानमंत्री 410 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखेंगे। वह हिसार से अयोध्या के लिए पहली उड़ान को भी रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री भारतमाला परियोजना के तहत 1,070 करोड़ रूपये की लागत से बने 14.4 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी बाईपास परियोजना का उद्घाटन करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्यपालों द्वारा राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजे गए राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति को 3 माह के भीतर फैसला करना चाहिए। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति महादेवन की पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि इसमें विलंब होने के वैध कारण को संबंधित राज्य के साथ साझा किया जाना चाहिए। पीठ ने तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के 10 लंबित विधेयकों पर मंजूरी न देने के फैसले को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति को भी राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर निर्णय लेने में 3 महीने से अधिक समय नहीं लेना चाहिए। अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो राज्यों को न्यायालयों में जाने का अधिकार है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने कल दोपहर जाफराबाद के एक घर से पिता और पुत्र के शव बरामद किए। मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक और व्यक्ति की मृत्यु हो गई। धुलियान में कल दोपहर फिर से हिंसा भड़क उठी जिसमें 2 अन्य लोग घायल हो गए। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की है। इस मामले पर सुनवाई के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय की विशेष पीठ ने मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है। श्री अधिकारी ने मुर्शिदाबाद में रेलवे स्टेशनों पर आगजनी की घटनाओं की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA से जांच कराने की भी मांग की है। अमेरिका ने देश में आयातित स्मार्टफोन और कंप्यूटरों को नवीनतम टैरिफ से छूट देने की घोषणा की है। US कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन की सूचना के अनुसार ये उत्पाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगाए 10% वैश्विक टैरिफ और चीन पर लगाए गए 145% टैरिफ से अलग रखे गए हैं। ये छूट उन उत्पादों पर लागू होगी जो 5 अप्रैल तक अमेरिका में प्रवेश कर चुके हैं या गोदामों से निकाले जा चुके हैं। इसमें अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे सेमीकंडक्टर, सोलर सेल और मेमोरी कार्ड भी शामिल हैं। इस फैसले से एप्पल जैसी टेक कंपनियों को राहत मिलेगी जो अपने उत्पाद चीन में बनवाती हैं। इस बीच भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते का पहला चरण भी ट्रंप प्रशासन के निर्धारित 90 दिनों के टैरिफ विराम के अंदर पूरा होने की संभावना है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ओमान की राजधानी मस्कट में ईरान के साथ हुई पहली दौर की वार्ता बहुत सकारात्मक और रचनात्मक रही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल मस्कट में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची के साथ बातचीत की। इस वार्ता की मेजबानी ओमान के विदेश मंत्री सईद बदर ने की। 2018 से दोनों देशों के रिश्तों में आई ठहराव की स्थिति के बाद इसे नई शुरुआत माना जा रहा है। अगले दौर की वार्ता अगले शनिवार को प्रस्तावित है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि ईरान के साथ समझौता हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल का दौरा करेंगे जहां वे मध्य प्रदेश सरकार के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में दूध और डेयरी उत्पादों से जुड़े सभी प्रमुख हितधारकों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। मोहन बागान सुपर जायंट ने 2024-25 की इंडियन सुपर लीग कप जीत ली है। कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगण में खेले गए फाइनल मुकाबले में उसने बेंगलुरु फुटबॉल क्लब को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराया। ये मोहन बागान सुपर जायंट का दूसरा ISL खिताब है। इससे पहले उसने 2022-23 में ATK मोहन बागान के नाम से ये खिताब जीता था। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।